Super Giant.
मालिनास की आज सैबीन का अहम मौसू है। गिलगित बल्तिस्तान में दियामीर भाषाराम की तामीर एक बार फिर शुरू। हुकूमत इसे मुल्क में तवानाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए अहम बताती है, लेकिन बाज़ माहिरीन प्रोजेक्ट की सख्त मुखालफत कर रहे हैं। फ्रांसीसी जरीदे शाले अब्जो के दफ्तर पर हमले के 5 बरस बाद हमले में मुलव्वस दो शिद्दत पसंदों को मुबैना तौर पर मदद फराहम करने वाले 14 अफराद पर मुकदमे का आगाज। और इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के एक डॉक्टर कफील खान नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के मुकदमे से बरी। डॉक्टर कफील कौन हैं और उत्तर प्रदेश की हुकूमत उन्हें बार बार जेल क्यों भेज देती है? गिलगित बल्तिस्तान में दियामीर भाषाराम की तामीर एक बार फिर शुरू हो गई है। इस बार इसकी तामीर पाकिस्तान चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत चीनी मदद से शुरू हुई है। पाकिस्तानी हुकाम इस मंसूबे को मुल्क में तवानाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए इंतहाई अहम करार देते हैं। अलबत्ता कुछ माहिरीन के मुताबिक पानी का इतना बड़ा जखीरा ऐसे इलाके में जमा करना जो जलजिले की फॉल्ट लाइन पर है तबाहकुन हो सकता है। बीबीसी की नामनिगार शुमारा जाफरी ने यह रिपोर्ट तैयार की है।
हाजी अब्दुल अजीज गिलगित बल्तिस्तान के इलाके चिलास के सोनूवाल कबीले के सरदार हैं। ये कबीला चिलास के उन तकरीबन 4000 से ज्यादा खानदानों में शामिल है जिनकी जमीन, कारोबार, घर और आबाई कब्रें सभी भाषा डैम की तामीर से पानी में डूब जाएंगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने मुतासिर होने वाली आबादी के नुकसान के अजाले के लिए समझौता किया है, लेकिन हाजी अब्दुल अजीज का कबीला इससे खुश नहीं।
2010 के मुआहदे के खिलाफ हमने एहतजाज किया है, रोड ब्लॉक किया है, अपना का काम बंद किया है। दो साल इधर जबरदस्त फायरिंग हुई है। हमें बिल्कुल 100% हमें स्टेक होल्डर नहीं बनाया। असल स्टेक होल्डर इस इलाके के हम सोनवाल कवायद जो कदीम बाशिंदगान ने चला वो है। हमें आउट कर दिया जल्दबाजी के अंदर, आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ कोर्ट उसके तहत मुहरे के तहत इनको रातों रात जो है 35 करोड़ रुपए 3635 लोगों में तकसीम हुआ, जो हमारे लिए इंतहाई तकलीफ दे है।
भाषा डैम दरिया सिंध पर गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामीर में बनाया जा रहा है और पिछले 22 सालों में पाकिस्तान के 4 वज़राए आज़म इसके तामीराती काम का इफ्तिताह कर चुके हैं। इमरान खान ने 15 जुलाई को इफ्तिताह किया।
हमारे फॉरेन एक्सचेंज पे प्रेशर नहीं पड़ेगा, अपना फ्यूल होगा, यानी जो पानी है वो पाकिस्तान का होगा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और ना हमारे मोहलियात के ऊपर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। तो ये जब जैसे जैसे डैम बढ़ती रहेगी, बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ये बहुत बड़ी चीज है। और मुझे ये भी श्योर किया गया कि आपको बिजली मुफ्त मिल रही है, इससे आप देखेंगे वक्त बताएगा कि इंशाल्लाह ये चिलास की खास तौर पे और गिलगित बल्तिस्तान की ये तकदीर बदल देगा।
पाकिस्तान की हुकूमत ये दावा करती है कि इस डैम से सस्ती बिजली बनाई जा सकेगी, लेकिन मुल्क में पानी और माहौल के माहिरीन की सोच मुख्तलिफ है।
ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, इससे जो तवानाई बनेगी वो बहुत सस्ती होगी और कुछ पैसे बताए जा रहे हैं, लेकिन जो तजिया निगार हैं वो ये कहते हैं कि भाई सिर्फ बनाने के पैसे नहीं होते, किसी पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तब तक पहुंचाने के वो सारे पैसे होते हैं जो चार्ज होते हैं, इसकी यूनिट कॉस्ट बहुत हाई होगी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में कोई इतने बड़े डैम नहीं बनने चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास पहले से मौजूद है उसी को हमें रिपेयर करना चाहिए, उसी को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और निजाम में जो पानी है उसका 2/3 पानी जो जाया हो रहा है उसको हम अगर बचा लें ये दूसरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके, तो समझ लीजिए कि नया पानी बन गया ना।
गिलगित बल्तिस्तान का इलाका माहौलियाती तब्दीली के एतबार से भी काफी मुतहरिक है और यहाँ जलजलों का खतरा भी रहता है। ماہرین کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں اتنا بڑا کنکریٹ ڈیم بنانا خطرناک ہو سکتا ہے.
یہاں پہ زلزلے بہت آتے ہیں, آپ ایک ایکٹیو فالٹ کے اوپر بیٹھے ہیں, یہاں پہ آپ یوریشین پلیٹ پہ جا کے اپنی انڈین پلیٹ جا کے یوریشین پلیٹ کو لگے اور ابھی بھی وہ اس کے نیچے جا رہی ہے, تو بڑی متحرک قسم کی جگہ ہے. تو وہاں پہ آپ اگر ڈیم بنائیں گے وہ بھی 950 فٹ کا, وہاں پہ ایکسپیرینس ہوئے ہوئے زلزلے, اس سے آدھا زلزلہ انہوں نے ماڈل کیا. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 950 فٹ کا ڈیم بنا رہے ہو, دنیا کا ہائیسٹ ترین ڈیم, اور اس کے اندر آپ نے ماڈلنگ کی ہو جو کہ آلریڈی ایگزسٹنٹ ہے, ایکسٹنٹ آپ کو پتا ہے کہ اتنا زلزلہ آتا ہے اس کے آدھے, آپ سوچ سکتے ہیں کہ سارے اگر 950 فٹ کا ڈیم جو ہے اگر وہ فیل ہو جائے تو پاکستان کی چھٹی.
آپ کا تربیلا از گون, آپ کا چشمہ از گون, ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈز ول ڈائی. بیسکلی آپ کا جو انڈس کا انفراسٹرکچر ہے,
اس ڈیم کی لاگت کا اندازہ 14 سے 18 ارب ڈالر تک لگایا گیا ہے اور پاکستان کے پاس اتنی رقم موجود نہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک پہلے ہی فنڈنگ دینے سے انکار کر چکے ہیں, لیکن اب چین نے اسے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں شامل کر کے اس کے لیے فنڈنگ کا اعلان کیا ہے. لیکن پاکستان میں ڈاکٹر دانش مصطفیٰ جیسے واٹر ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ اس فنڈنگ کے حوالے سے کوئی شفافیت نہیں, اور یہ کہ نہ تو شاید کبھی پاکستان کے پاس اتنی رقم ہوگی اور نہ ہی کبھی یہ ڈیم بن پائے گا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
ڈیم بھاشا ڈیم پر مختلف ماہرین اور علاقے کے لوگوں کی جانب سے اٹھائے گئے اعتراضات کے بارے میں ہمارے ساتھی آصف فاروقی نے اس منصوبے کے ذمہ دار ادارے واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا واپڑا کے سربراہ لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین سے بات کی اور پہلے پوچھا کہ ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے اس ڈیم کی تعمیر کے لیے فنڈز فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد اس ڈیم کی تعمیر کھٹائی میں پڑ گئی.
دیکھیں بنیادی مسئلہ بالکل وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل ڈونرز جو اے ڈی بی ہے یا ورلڈ بینک ہیں اور باقی بھی انسٹیٹیوشن ہیں ان کا انٹرسٹ پاکستان کو سپورٹ کرنے میں نہیں, تو یہی ایک وجہ تھی کہ پاکستان کو اتنا وقت لگا ہے اس ڈیم کو بنانے میں. اب جو ماڈل ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ڈیم پارک ہم بنا رہے ہیں جس میں کم و بیش 600 روپیہ ہمارا لگے گا, اس 600 روپے میں کم و بیش 240 روپیہ ہمیں گورنمنٹ دے گی اوور 8 to 9 اور واپڈا کی جو اپنی ایکویٹی ہے وہ 100 روپیز میں ہو جائے گی. اب اور اس میں سے تقریباً جو 105 روپے آلریڈی ہم اسپینڈ کر چکے ہیں, تو ہمیں جو 100-150 روپے چاہیے ہوگا وہ اگلے ہمیں 9 سال میں چاہیے. اور پیسہ دینے کے لیے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ نو بڈی از ڈوئنگ اینی فیور ٹو یو, آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ وی آر ارننگ سو مچ کہ ہمیں کوئی بھی شخص کسی تھوڑے وقت کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار ہے اور ہم جو انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشن ہے ان کے لیے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. تو ڈیم پارٹ کے لیے آپ کے لیے جو آپ کی بیس لائن یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں اللہ کی فضل سے اس کے فائنینشیل ماڈل میں کوئی ایشو نہیں ہے اور ہم اس کو ٹائم کرنے کو
اور جو پاور جنریشن کا جو اس کا جو ایسپیکٹ ہے جو حصہ ہے اس پہ کتنے پیسے لگیں گے اور وہ پیسے کہاں سے ہیں؟
پاور جنریشن کا پارٹ ہے دیٹ از ایون مور ایزیئر ان سے, لیکن پاور جنریشن میں جو واپڈا کی اپنی ریٹرن آف ایکویٹی ہوتی ہے جو ہماری اپنے وسائل ہیں آپ کو بیسیکلی گائیڈ ہوتے ہیں.
سر آپ نے فرمایا کہ آپ ٹیرف کے تھرو آپ فنڈ جنریٹ کریں گے, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اینڈ یوزر سے یعنی پاکستانیوں سے پیسے لیں گے اس ڈیم کو مکمل کرنے؟
آپ غلط سمجھ رہے ہیں, آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ ڈیم بیٹھا جب بنے گا اس کا ٹیرف 2.87 روپے ہوگا,
لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیرف پہ بجلی کے بل میں لگ کے تو وہ پیسے آ رہے ہوں گے نا ڈیم کے لیے, جو فنڈنگ کر رہے ہیں لوگ بیسیکلی پیسے دے رہے ہوں گے اس ڈیم کو بنانے کے لیے,
اتنے کم دے رہے ہوں گے جو 100 روپے انرجی کا دے رہے ہیں اس کی نسبت 2.87 روپے.
آپ نے سر فرمایا کہ اس پہ جو لینڈ ایکوزیشن یعنی جو زمین حاصل کرنے کا جو مسئلہ تھا وہ بھی حل کر گیا, لیکن ہمارے وہاں پہ جو علاقے کے لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ تو ابھی تک وہاں پہ جرگے چل رہے ہیں, لوگ ڈسپیوٹ میں جا رہے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں مانتے جو بھی ہمیں آفر کیا گیا ہے, تو پرابلم تو ابھی وہاں پہ موجود ہے.
ہم نے جو ہرپن داس میں ایک ری سیٹلمنٹ ویلیج بنایا ہے وہ دیٹس آر ٹاپ لوکیلٹی ان کلاس اور پرائسز ہیں وہ دیر ایز ہائی ایز اندور اور اندور سٹی میں ہیں, اس کو ہم نے جتنے یہ ہمارے 32 ولیجز ہیں جس میں 4,000 سے زیادہ ہاؤس ہولڈ ہیں ان سب نے برابر تقسیم کر دیا اور باقی جو جگہیں تھیں اس کے ری سیٹلمنٹ کے لیے گورنمنٹ نے 13 بلین ایڈیشنل ان کو دیے ہیں اور وہ بھی उनको गवर्नमेंट ऑफ जीपी को उनको दे गए हैं, तो रीसेटलमेंट के लिए उनको वो प्राइस दी गई है जो उनकी मोबाइल प्राइस थी, और जमीन की सेटलमेंट के लिए सारे इश्यूज हमारे रिजॉल्व हो चुके हैं। हाँ, कुछ छोटे मोटे अगर इंटर या इंटर ट्राइब हैं तो वक्त के साथ होगी, बट दे हैव नो प्रॉब्लम फॉर दैट।
एक और इश्यू है जिसके ऊपर काफी माहिरीन जो हैं, बाज़ माहिरीन काफी अपना शदीद एतराज़ कर रहे हैं, वो है स्ट्रक्चर डिजाइन। मिसाल के तौर पे जो इसकी हाइट है वो 950 फीट है, क्या आपका डैम जो बड़े जल्दे हैं जो कि पाकिस्तान में आ सकते हैं और उस एरिया में भी आ सकते हैं, क्या उनको सह पाएगा?
ये जो जगह जहाँ पे हम गांधी बादशाह बना रहे हैं, कम से कम 13 से 14 किलोमीटर और जो इसमें मैक्सिमम एवरेज जॉल्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसमें आप इवैल्यूएशन असेसमेंट करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, मिटिगेशन स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उसमें इसका डिजाइन 4-5 टाइम मोर से ज्यादा बेटर करता है, और इसकी जो बेस्ट डिजाइन है 5 ईयर्स पे वो हमें एंडोर्स करता है कि दिस इज बेस्ट पाकिस्तान फुल है।
वापड़ा के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन से आसिफ फारूकी ने बात की। फ्रांस की दारुलहुकूमत पेरिस में आज सन 2015 में होने वाले हमलों के केस की समाअत शुरू होगी। ये हमले फ्रांसीसी जरीदे शाली एब्दो के 2015 में पैगंबर इस्लाम के मुतनाज़े खाके छापने के बाद हुए थे। इन हमलों में 17 अफराद हलाक हुए। तफसील के साथ ख़ज़नफ़र हैदर, इस रिपोर्ट की शुरुआत उन हमलों के मनाजिर से हो रही है।
5 साल पहले इन मनाजिर ने फ्रांस में एक नई किस्म की दहशत फैलाई। कवाचिब्रादरान चार्ली हेप्टो के दफ्तर पर 11 लोगों को हलाक करने के बाद ये चिल्लाते हुए बाहर निकले कि उन्होंने पैगंबर इस्लाम का बदला ले लिया है। जायवकू से फरार होते वक्त उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर को भी हलाक किया। पुलिस ने जब हमलावरों की तलाश शुरू की तो पेरिस शहर के मशरकी हिस्से में एक और वाकया पेश आया। अहमदी कोलवली ने, जो क्वाची ब्रादरान का साथी था, एक पुलिस खातून अहलकार को हलाक करके कई लोगों को यरगमाल बना लिया था। इसने 9 जनवरी को यहूदियों के एक सुपरमार्केट में 4 यहूदियों को कत्ल कर दिया और खुद पुलिस से फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया। इस वाकये के एक दिन बाद पेरिस में एक और हमले में 5 शहरी हलाक हो गए थे। इन हमलों के बाद फ्रांस में शिद्दत पसंदी के कई और हमले भी हुए। 14 अफराद पर असलाह हासिल करने और हमलावरों को चार्ली हेब्डो और एक दिन बाद यहूदियों की एक सुपरमार्केट और एक पुलिस ऑफिसर पर हमला करने में मदद फराहम करने का इल्जाम है। इनमें से 3 मुलजमान पर उनकी अदम मौजूदगी में मुकदमा चलाया जाएगा, क्योंकि उनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो हमले के बाद शाम और इराक चले गए थे। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे की अखला के मुताबिक इस मुकदमे में 200 के करीब दरख्वास्त गुजार और हमले में बच जाने वाले अफराद गवाही के लिए बुलाए गए हैं। ये मुकदमा मार्च में शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसकी समाप्त को मौखर कर दिया गया था। तवक्कु है कि इसकी सुनवाई नवंबर तक जारी रहेगी। चार्ली हेब्डो इस हमले से पहले कैथोलिक, यहूदियत और इस्लाम के बास पहलुओं का तमस्कर उड़ाने की वजह से लंबे अरसे से तनाजात को हवा देता रहा है और इस पर इस हवाले से तनकीद भी की जाती रही है, लेकिन पैगंबर इस्लाम के खाके शाये करने के बाद से इसके सहाफियों और अमले को धमकियां मिलना शुरू हो गई थी और सन 2011 में इसके दफ्तर पर पेट्रोल बम भी फेंके गए थे। इस वाकये के बाद दुनिया भर में खाकों की इशाद पर शदीद रद्द अमल सामने आया था। ग़ज़नफ़र हैदर, बीबीसी न्यूज़।
इंडिया के एक सरकारी डॉक्टर और समाजी कारकुन डॉक्टर कफील अहमद खान को एक अदालती हुक्म के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें शहरियत के तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक मुबैना इश्तियाल अंगेज तकरीर करने पर जनवरी में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया है। उन्हें पहले भी कई बार गिरफ्तार किया जा चुका है और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने उन्हें मुलाजमत से मुअत्तल कर रखा है। दिल्ली से हमारे नामनिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट।
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈاکٹر کفیل خان کی وہ تقریر جسے اتر پردیش کی حکومت نے اشتعال انگیز قرار دیا تھا۔ ڈاکٹر کفیل کو قومی سلامتی ایکٹ کے تحت جنوری میں گرفتار کیا گیا تھا۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے کل ایک فیصلے میں ان کی تقریر کو صحیح پایا اور ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا۔
اتر پردیش سرکار نے ایک جھوٹا اور ایک فکشیس کیس، مطلب بنا بات کے ایک ڈراما کر کے ایک کیس بنایا اور مجھے 8 مہینے تک اس جیل میں 5 دن تک بنا کھانا دیے ہوئے बिना पानी दिए हुए इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया गया।
डॉक्टर कफील खान पहली बार उस वक्त रोशनी में आए जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के सबब बड़ी तादाद में बच्चों की मौत हो रही थी। उनकी हर तरफ बच्चों को बचाने वाले डॉक्टर के तौर पर तारीफ की जा रही थी, लेकिन रियासती हुकूमत ने उन्हें लापरवाही, बद इंतजामी और बदनवानी और कई दीगर इल्जाम में बाज दीगर डॉक्टरों के साथ जेल भेज दिया। उन्हें बहराइच में एक मेडिकल कैंप लगाने के दौरान भी गिरफ्तार किया गया था। उनकी मुश्किलात उस वक्त और बढ़ गईं जब गुज़िश्ता दिसंबर में उन्होंने शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA के खिलाफ मुहिम में हिस्सा लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनके साथ इस एहतजाज में मुल्क के नाम और समाजी कारकुन योगेंद्र यादव भी थे।
डॉक्टर कफील किस्मत वाले, क्योंकि उन्हें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से न्याय मिल गया, जो इंसाफ मिल गया, वो आज भी सैकड़ों हजारों लोगों को नहीं मिल रहा। देश में हर जगह CAA के खिलाफ खड़े होने वाले लोगों को क्रिमिनल करार दिया जा रहा।
कोरोना की वबा के बाद CAA और NRC के खिलाफ मुहिम रोक दी गई है। तहरीक के बेहतर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से बाज डॉक्टर कफील की तरह हालिया दिनों में जमानत पर रहा हुए हैं। शहरियत के मुतनाज़ा कानून का सवाल अपनी जगह कायम है और उसकी मुखालफत करने वाले भी दोबारा तहरीक चलाने के लिए सूरत हाल के मामूल पर आने का इंतजार कर रहे हैं। शकील अख्तर, BBC न्यूज, दिल्ली।
आज से दिन में इतना ही। आप चाहें तो हमसे हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस पर भी रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारी वेबसाइट bbc.com/urdu देखते रहिए। आलिनास की कोई इजाजत दीजिए।
You are listening to WTUR 770 AM, Youngstown, Toronto.
आप CIBC Global Money Transfer के साथ बहुत ही आसानी से अपने घर से विदेश पैसे भेज सकते हैं, वो भी $0 ट्रांसफर फी पर। आप पैसे ऑनलाइन या CIBC के मोबाइल ऐप से भेज सकते हैं। आज ही अपना पहला ट्रांसफर करें और पाएं $50। अधिक जानकारी के लिए cibc.com/transfer पर जाएं।
कहते हैं कि माया को खींचे माया का कलम बिहार। हैरी सॉन द मेजेस्टिक मॉर्गेज के साथ रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेज रीफाइनेंसिंग आपने करनी है, किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेनी है, सारे बैंकर्स और लेंडर्स के साथ डीप तल्लुक आते हैं कि आपको फाइनेंसिंग का बंदोबस्त भी हो जाएगा और चार्जेस भी कोई नहीं देने पड़ेंगे। हैरी सॉन जी बड़ी कमाल की तकलीफ लगा सकते हैं, बस आप कॉल कर लीजिए और पैसे का रेंज हो जाएगा। $228 से $1,000 महीना कैसे बचा सकते हैं? कॉल हैरी सॉन नाउ 6472281000 Harry Sond of Majestic Mortgages.
Asian Food Center 905-793-1338. आपके किचन की तमाम जरूरियात के किचन प्रलेट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोसरीज एंड स्टेबल्स, ब्रेडरी एंड एग, बेवरेज एंड कन्फेक्शनरी, ब्रांडेड फूड्स, पर्सनल केयर एंड हाउसहोल्ड, स्वीट्स एंड समोसास। ऑर्डर नाउ फॉर इन स्टोर फ्री पिकअप 905-793-1338. Home delivery is also available at Asian Food Center 905-793-1338. Asian Food Center.
बसों से जाना पहचाना, काबिल एतमाद रियल स्टेट की किसी भी जरूरत के लिए कॉल कीजिए 6478986245 647-898-6245 के रियल स्टेट की।
खाने का इंतजाम तो बहुत ही जबरदस्त है और मेन्यू भी कमाल का है, बनाया भी कितना लजीज है।
ये सब कमाल है, क्रिदना से पका दावत हो तो किचन बहुत खूब करते हैं, और अगर गैस से बाहर खाना खाने के दिल चाहे तो संतो कस्टमर की पसंद क्रिदना हट पर मौजूद। हाँ, एक और बात, खाने के बाद गारंटी नो हार्ट बर्न।
क्रिदना हट का मुझे भी नंबर दें, हमारे यहाँ कोई ना कोई मेहमान आते ही रहता है।
क्रिदना हट मिसिसागा में, बस कॉल कर लीजिए 905-405-8383, 405-8383, क्रिदना हट।
डॉक्टर मजीद काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट, दांत निकलवाने हैं, लगवाने हैं, क्राउन्स हैं, ब्रिजेस हैं, इवन अगर इम्प्लांट्स या ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो ब्रैम्पटन में हैंसन और क्वींस इंटरसेक्शन पे और अब सिग्मा डेंटल क्लिनिक विलियम्स पार्कवे एंड क्राइस्टर के इंटरसेक्शन पे बेहतरीन डेंटिस्ट तमाम इंश्योरेंस प्लान को एक्सेप्ट करते हैं। अपॉइंटमेंट बनाइएगा, साज़ो आवाज़ का हवाला देके डिस्काउंट हासिल कीजिएगा। डॉक्टर मजीद काजी आपके फैमिली डेंटिस्ट 905-457-8661। सोना यानी गोल्ड खरीदना या बेचना है तो एक काबिल एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स याद रखिएगा। असलम या इकराम भाई से मुलाकात कीजिएगा। हाथ के बने हुए या मशीनी जेवरात, इतनी वैरायटी है चूड़ियों और कड़ों में, चेन्स में, आप सोने की खरीदारी के लिए एक एतमाद नाम रूबी ज्वेलर्स विजिट जरूर कीजिएगा। प्रोग्राम का रेफरेंस देंगे तो डिस्काउंट भी है और सोने की रिपेयर कोई चार्ज नहीं। रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड मॉल्टन में, रूबी ज्वेलर्स।
अपने घर की खूबसूरती के लिए आज ही कॉल कीजिए एसएस पेंटिंग। किसी भी इंटीरियर या एक्सटीरियर पेंटिंग के लिए, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल, ड्राईवॉल रिपेयर, वाटर डैमेज, वॉलपेपर रिमूवल, प्रोफेशनल परफॉर्म स्टुको सीलिंग एंड रिपेयर विद गारंटी, कॉल टुडे एसएस पेंटिंग 647-271-1974 647-271-1974 एसएस पेंटिंग।
कहीं मॉर्गेज नहीं मिल रही, झटपट मॉर्गेज दिला के सारी मुश्किल कर देंगे आसान। 11 साल से ज्यादा तजुर्बा और एक भरोसेमंद नाम, हर किस्म की रेजिडेंशियल या कमर्शियल मॉर्गेज के लिए मॉर्गेज अलायंस की जसमीत परमार से राब्ता करें। रीफाइनेंसिंग ऑप्शंस, रिन्यूअल ऑप्शंस, मॉर्गेज डिफिकल्टीज, डाउन पेमेंट इश्यू, सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फंड्स, सेकंड मॉर्गेज के लिए कॉन्टेक्ट करें मोस्ट ट्रस्टवर्दी जसमीत परमार से। नंबर टू कॉल 6479235659 6479235659। लाइसेंस नंबर 10530। ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਰੀਆਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਲੌਕੀ, ਕਰੇਲੇ, ਬੈਂਗਣ, ਮੂਲੀ, ਮੇਥੀ, ਧਨੀਆ, ਸਾਗ, ਮਟਰ, ਗਾਜਰਾਂ, ਕਰੇਲੇ, ਖੀਰੇ ਤੇ ਸ਼ਲਜਮ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਗਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਦੁਕਾਨ ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਕੈਲੇਡਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਕੈਲੇਡਨ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਮੇਫੀਲਡ ਰੋਡ 905-653-3633-905-653-3633।
ओंटारियो के स्कूलों को सुरक्षित रूप से फिर से खोलने में हम सभी को अपनी भूमिका निभानी है। इसीलिए हमारे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए ओंटारियो सरकार ने एक व्यापक योजना विकसित करने के लिए डॉक्टरों, स्वास्थ्य अधिकारियों, स्कूल बोर्ड्स और शिक्षकों के साथ काम किया। साथ मिलकर काम करते हुए हमारी योजना में शारीरिक दूरी रखना, स्कूल्स में अधिक नर्सेज रखना, मास्क पहनना, ज्यादा सफाई और हैंड सैनिटाइजेशन तथा छात्रों और स्कूल कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय शामिल हैं। अधिक जानने के लिए कृपया ontario.ca/reopeningschools पर जाएं। ओंटारियो सरकार द्वारा भुगतान किया गया।
Go up.
WTOR, Youngstown, Toronto, now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Bearsh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
Love. चल दे तेरे साथी मेरे कदमों के है निशान तू ना जाने आस पास है खुदा तू ना जाने आस पास है खुदा
तू मोहब्बत तोड़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका कर के नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो
Yeah.
भी पता, मुझे भी पता, ये जो भी है दिल ही है गलतियाँ। तुझे भी पता, मुझे भी पता, ये जो भी है दिल ही है गलतियाँ। हम हैं बेकसूर, दूर दूर मरना जाए छोरे सह सह के, याद तेरिया अंजुल लेके, याद तेरिया फासले, मर्जी नहीं हमारी रब ये है फैसले। हमें जो मिले ये जो फासले, मर्जी नहीं हमारी रब ये है फैसले। हाथों की रखी जो मोड़ दे,
तू बिछड़न बिछड़े तो जी ना पाएंगे, बिछड़े तो जी ना पाएंगे। सारे का बात सारे का बात
ले आई है बीते हुए लम्हों को फिर, हाँ ये जिंदगी यूं बेरहम सी हो गई, लेने चली जा ये जिंदगी। खुदा क्यों उठ गया मुझसे, नहीं था बैर मेरा तुझसे, क्यों तूने छीन लिया मुझसे मेरा जहां। ऐ खुदा तू बता, बीते हुए लम्हों
خدا کیوں لوٹ گیا مجھ سے نہیں تھا بیٹھ میں.